بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد، سيما للإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، عجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وقرآنه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ربك أن يبعثك مقاما محمودا. وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. फातिमिया 1442 हिजरी 1442 हिजरा जनवरी 2021 दूसरी रिवायत की बुनियाद पर खमसा मजालिस के सिलसिले की आज ये हमारी दूसरी गुफ्तगू है और इब्तदाई मजलिस में ही ये वजाहत कर दूं कि कल रात मैंने मसाइब के हवाले से एक वादा किया था कि आज के मसाइब में एक जुमला और आएगा, लेकिन आज ये ख्याल करते हुए कि शहादत का दिन अभी अभी ख़त्म हुआ है तो शहादत ही के मसाइब पढ़ना है, और इंशाअल्लाह जो बात मैंने गुज़श्ता कल की मजलिस में अर्ज की थी वो आइंदा मजलिस में आपके सामने आएगी। ये मसाइब की हद तक बात कर रहा हूं। मजालिस का मौजू है रिजाए ज़ाहरा। बहुत ही मुख्तसर वो क्या चीजें हैं जो जनाब ज़ाहरा सलामुल्लाह अलैहा को राजी करने वाली, शहजादी के दिल को खुश करने वाली चीजें कौन सी हैं। हमारे यहां कैलेंडर में एक तारीख तो आती है ईद उज ज़हरा, और वो एक खास बैकग्राउंड या कॉन्टेक्स्ट में वो ईद मनाई जाती है, लेकिन शहजादी की पूरी जिंदगी को अगर देखा जाए 18 साल की, तो हमें कई ऐसी चीजें नजर आती हैं जिसमें शहजादी कम से कम अपने मानने वालों से तो ये डिमांड करती हैं कि ये काम ना करना, इससे मैं नाराज होती हूं, मेरे दिल को तकलीफ पहुंचती है, मुझे अजियत होती है, और ये काम करना, इससे मैं राजी होती हूं और खुश होती हूं। तो इन पांच मजालिस में, जिनमें से एक मजलिस तो कल गुजर गई, अब बाकी चार मजालिस में जितना मुमकिन हो सकेगा, वैसे ये मौजू तो पूरे एक अशरे का है, लेकिन जितना हो सकेगा हम कोशिश करेंगे कि अपने कम इल्मी के बावजूद कुछ बातें मोमिनीन और मोमिनात तक पहुंचा सकें। आज मैंने सूरह बनी इसराइल की पांच मुसलसल आयतों की तिलावत की, और इन पांचों का ताल्लुक वाकया मेराज से है। ये पांच की पांच आयतें भी शबे मेराज نازل ہوئی. کل کی مجلس میں میں نے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت آیت نمبر 1 اس کی تلاوت کی تھی, جس میں قرآن نے صرف یہ بیان کیا تھا کہ یہ سفر معراج ہوا. لیکن آج جو آیتیں میں نے تلاوت کی اس میں اس سفر معراج کے حوالے سے کچھ ڈیٹیل یا تفصیل آئی ہے. آیت نمبر 78, 79, 80, 81 اور 82. اور بہت سارے مومنین ان آیتوں میں سے آیت نمبر 80 کو فجر کی نماز کے بعد سینے پہ ہاتھ رکھ کے پڑھتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ دل کی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے قرآن کے بہترین اعمال میں سے ایک. اور بہت سے مومنین آیت نمبر 82 کو فجر کی نماز کے بعد پانی پہ پڑھ کے اس سے اپنی آنکھیں دھوتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ آئی سائٹ کے لیے قرآن کریم کی یہ ایک بہترین دعا ہے. آیت 80-82 تو ہمارے یہاں ویسے رائج ہے اعمال اور دعاؤں کے حوالے سے, اور آیت نمبر 81 تو بہت زیادہ ہمارے یہاں تلاوت کی جاتی ہے یا کم از کم سنی جاتی ہے, خاص طور پر جب کبھی امام زمانہ اجل اللہ تعالی ظہورہ الشریف کے حوالے سے کوئی تاریخ آتی ہے. لیکن یہ ذرا بکھرے ہوئے انداز میں یا اسکیٹرڈ طریقے سے جو آیتیں پڑھی جاتی, اصل میں یہ 5 کی 5 آیتیں واقعہ معراج میں نازل ہوئیں, اور اس میں 5 بہت اہم ترین پیغام ہیں جو وہیں سے لنک کر رہے ہیں جہاں تک ہماری کل رات کو بات پہنچی تھی. سفر معراج کا مقصد ولایت علی, ولایت علی کی حفاظت کے لیے 2 بہترین تحفے, ایک وجود سیدہ سلام اللہ علیہا اور ایک نماز. اور یہ دونوں اس طرح ایک دوسرے سے ملے ہوئے کہ ان دونوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا. انا اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر. اب یہ جو 5 آیتیں شب معراج پیغمبر کو عطا ہوئی ہیں, ان میں سے پہلی آیت خود اسی نماز کے بارے میں ہے, اور بڑے عجیب انداز میں خدا نے اس کے بعد, اس آیت کے بعد جو اب میں ترجمہ کرنے والا ہوں, 78 آیت سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17, اس کے بعد جو 3 آیتوں میں 3 بہت اہم پیغام ہیں ان سے پہلے نماز کا ذکر کیا. گویا ایک میسج ہے کہ یہ نماز ہے کہ جو وہ جو 3 اہم پیغام آ رہے ہیں ان تینوں کی حفاظت کرنے والی ہے یا ان تینوں تک ہم کو پہنچانے والی. تو اب چونکہ کل نماز پر کافی گفتگو ہو گئی, اس لیے میں آج صرف آیت کا ترجمہ کر کے, تاکہ آیتوں کا ایک ربط ایک سیکوینس ملے, آگے بڑھ جاتا ہوں. البتہ یہ آیت ہمارے یہاں ویسے اس وقت بھی تلاوت کی جاتی ہے جب یہ بحث ہوتی ہے کہ 5 نمازیں, لیکن قرآن کریم نے ٹائمنگ 3 بتائی, تو 3 ٹائمنگ میں 5 نمازیں اسی طرح سے پڑھی جا سکیں گی کہ پھر کچھ نمازوں کو ملانا پڑے گا. تو یہ آیت ان آیتوں میں سے ایک ہے جو نماز کے 3 ٹائمنگ بتاتی. اقم الصلاۃ, نماز قائم کرو, لدلوک الشمس, جب سورج ڈھلنے لگے, آدھا دن ہو جائے اس کے بعد صبح سورج نکلتا ہے پھر آسمان پہ پہنچتا ہے, نصف النہار اس کے بعد جب سورج ڈھلنے لگتا ہے. کہا کہ نماز قائم کرو دلو کے شم سے لے کر اذا غسق اللیل, رات کے اندھیرے تک. وقرآن الفجر, اور صبح و سویرے, ان قرآن الفجر کا نہ مشہودا. تو 3 ٹائمنگ بتائیں, سورج ڈھلنے کے بعد, رات کے اندھیرے میں, اور فجر کا وقت. اب اس وقت نماز قائم کرو, یہ قرآن نے بتایا. یہی 3 ٹائم وہ ہے کہ جب شہزادی کونین کے چہرے سے ایک ایسا نور ظاہر ہوتا تھا جو زمین سے شروع ہو کے آسمان تک جاتا تھا, और नूर को देखने वाली निगाहें, ये सब आसमान पर है फरिश्तों की। वो ये तीनों औकात में नूर जहरा की, नूर सैयदा की जियारत करते हैं। चुनाचे शहजादी का दूसरा मशहूर तरीन नाम या लकब जहरा करार पाया, लेडी ऑफ लाइट। मैंने अर्ज किया था कि इस जहरा के तीन माने, एक का बहुत गहरा ताल्लुक नमाज से है, एक का बहुत गहरा ताल्लुक हिजाब से, और तीसरा भी अभी सुन लीजिए, अगर के ये मौजू आज के मजलिस में ही आने वाला है आगे चलकर, लेकिन हो सकता है कि आज ये मौजू ना आ सके तो आने वाली कल की मजलिस में जो तीसरी होगी आएगा जरूर ये मौजू। और ये जो तीसरे माने, जहरा के तीन मानों में तीसरे माने, ये मेरी कल रात की मजलिस के मसाइब के जुमले से मिलता है। कल रात के मसाइब में एक जुमला मैंने ये अर्ज किया था कि शहजादी की जिंदगी का खुलासा दो के बीच में, या अल्लाह की इबादत या घर वालों की खिदमत। ना ऐसा कि हर वक्त मुसल्ले पर है, जबकि शहजादी जैसा नमाज पढ़ने वाला कायनात में कोई नहीं गुजरा, लेकिन जो घर वालों की जिम्मेदारियां है वो भी अदा कर रही, और ना इतना ज्यादा घर वालों के जिम्मेदारियों में लगे कि अल्लाह ही को भूल जाए। नऊज़ु बिल्लाह, ये मैं बतौर मिसाल कह रहा हूं। दोनों के बीच में एक बैलेंस, ये बहुत मुश्किल है, ये आसान नहीं है। इसी को तो इमाम मासूम ने फरमाया, अल्फाज मेरे हैं मफहूम इमाम का है। इसी को तो इमाम मासूम ने फरमाया कि तुम डरे जा रहे हो, घबराए जा रहे हो, परेशान हुए जा रहे हो कयामत के पुले सिरात से, कि बाल से ज्यादा बारीक, तलवार की धार से ज्यादा तेज, आग से ज्यादा गर्म पुल पर से कैसे गुजरोगे। घबराता है आदमी, परेशान होता है आदमी, लेकिन ये दुनिया में भी पुले सिरात है जिससे तुम रोज गुजरते हो, ये भी बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार की धार से ज्यादा तेज है, आग से ज्यादा गर्म है, फिसल फिसल के रोज गिरते हो इससे, और कोई एहसास ही नहीं। और वही उसमें से एक मरहला ये वाला है कि अल्लाह की इबादत, वैसे तो इंसान का हर अमल अल्लाह की इबादत है, लेकिन यहां इबादत से मेरी मुराद ये है जो फिक्र इस्लामी की एक टर्म है कि जो फुरू दीन कहलाती है, नमाज रोजा हज ज़कात जिहाद मसलन, कि अल्लाह की इबादत और अल्लाह के बंदों की खिदमत में बैलेंस रखना, ना इधर ज्यादा ना उधर ज्यादा। इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल और बेस्ट रोल मॉडल हमारे सामने शहजादी की जात है। अब ये कल मसाइब में मैंने इसके हवाले से बात की थी, और जहरा के तीसरे माने इसी बैलेंस को बता रहे हैं। जहरा के तीसरे माने, ये खुद तीसरे माने अपनी जगह मैंने कहा एक अलग मौजू है, जो फिलहाल मेरे जहन में यह है कि आज की मजलिस के आखिरी हिस्से में आएगा, हो सकता है बात लंबी हो जाए तो कल की मजलिस में इंशाल्लाह जिंदा रहा तो आ जाएगा। जहरा के तीसरे माने, और जहरा के तीसरे माने तीनों का ताल्लुक नूर से, जहरा के तीनों मानों का ताल्लुक नूर से, चाहे वह नमाज के वक्त का नूर हो जहरा के चेहरे से जाहिर होता है, चाहे वो हिजाब के हवाले से नूर हो जहरा के चेहरे से, वो नूर के देखने वालियां भी जहरा के चेहरे की तफसील किसी को नहीं बता सकती, और चाहे वो ये तीसरे माने हो, तीसरे माने ये कि रोजाना कम से कम तीन मरतबा जहरा के चेहरे का नूर मुख्तलिफ अंदाज से मौला अली के लिए बदलता रहता था। अब ये बड़ा मुश्किल मसला होता है जब मौला और शहजादी की बात की जाए, उनका एहतराम, उनका रुतबा, उनकी फजीलत, और पैगाम दिया जा रहा हो उनके हवाले से हमारी आम औरतों और आम मर्दों को, इन आम औरतों और आम मर्दों के लिए अल्फाज अलग इस्तेमाल होंगे, शहजादी और मौला के हवाले से एहतराम के अल्फाज अलग होंगे। कहीं कहीं हो सकता है कि मैं ठोकर खा जाऊं तो आप मेरी गलती माफ कीजिएगा, अहले बैत अथार की बारगाह में भी, कि वो देख रहे हैं कि मेरी नियत क्या। यह रिवायत है कि जहरा खुलासा जहरा का नूर है, जहरा का मतलब नूर है। तो अब ये नूर दिन में अली के लिए मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ अंदाज से जाहिर होता था, यानी जब कभी मेरा मौला घर में आता जहरा को एक नए अंदाज से पाता। अब ये वाला जो लफ्ज है ना, इसकी बहुत फिर तशरी है, बतूल के अंदर भी मासूमीन ने इसकी वजाहत की है, लेकिन जो हमारे माहौल के एतबार से वो वजाहत चाहे मासूम ने की, थोड़ा सा एहतराम के मनाफी हो जाएगी, इसलिए मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूं। लेकिन यह है कि गोया बहुत मुख्तसर, हर बार जब मौला आते हैं जहरा एक मुख्तलिफ अंदाज से अपने शोहर के लिए तैयार होती। अब ये एक अलग पैगाम बनेगा, ये पूरा एक अलग मौजू है, बीवी की क्या जिम्मेदारियां हैं अपने शोहर के हवाले से। तो वो तो शहजादी की सीरत हिजाब और ये पैगाम ना हो तो फिर मोमिनीन कराम का वक्त ही एक तरह से चला जाएगा। तो ये अभी अनकरीब आएगा ये वाला पहलू। लेकिन जहरा के तीन मानों में से एक का ताल्लुक शोहर से है, एक का ताल्लुक हिजाब से है, एक का ताल्लुक नमाज से है। और पहली आयत जो शबे मेराज पैगामात मिल रहे हैं उसकी पहली आयत नमाज है। इसी आयत से इस्लाम में नमाज वाजिब हुई, पांच नमाजें। हर एक को पता है कि शुरू इस्लाम में दो नमाजें वाजिब थी, लेकिन मेराज की रात से पांच हो गई। फिर रिवायत एक और भी है कि 50 थी तो पैगंबर ने पांच कराई, लेकिन वो रिवायत कितनी सही है कितनी गलत है, या अगर सही है तो उसका मतलब क्या है, वो बहस उस वक्त के लिए छोड़ दें कि अगर कभी मैं जिंदा रहा और मेराज पर मैंने बात की तो। इस आयत से मेराज में नमाजें पांच नमाजें वाजिब हुई तीन औकात, और तीन औकात में जहरा का नूर। अब ये जहरा के तीन माने हो गए, तीसरे माने पे अभी बात होने वाली। अब इसके फौरन बाद शहजादी कौनैन की सीरत का वो पहलू आता। ये तीन मुसलसल आयतें हैं कुरान की, पांच है जिसमें पहली नमाज है, नमाज और फातिमा का रिश्ता मैंने कल बता दिया। तीन मुसलसल आयतें, तीन बहुत अहम पैगाम दिए गए। ये तीनों चीजें रिजाए जहरा, और ये जो तीनों पैगाम कुरान करीम की तीन मुसलसल आयतों में आए 79, 80, 81। एक का ताल्लुक है रिसालत से, एक का ताल्लुक है इमामत से, एक का ताल्लुक है जहूर इमाम जमाना से। तीन मुसलसल आयत कब नाजिल हो रही है? शबे मेराज। इस्लाम में जनाब फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा के रोल की जो अहमियत। अच्छा मैं एक जुमला और कह दूं, ये सारे जुमले अपनी अपनी जगह, कोई अच्छा खतीब होता, कोई अच्छा स्पीकर होता तो इस तरह से आपके सामने बयान करता कि एक एक जुमले में 15-15 मिनट आपके ले लेता और आपको मजा आता। मैं तो बहुत मुख्तसर बात, ये तीन को अगर मैं बहुत ही मुख्तसर करूं, कुरान की तीन आयत। अच्छा कुरान उस कलाम का नाम है जो पहले ही बहुत मुख्तसर। कुरान की सबसे बड़ी खसूसियत यह कि कुरान का मुख्तसर होना, मुकम्मल मैसेज, कंप्लीट कलाम और इंतहाई मुख्तसर। उसके बावजूद ये तीन आयतों को और ज्यादा मुख्तसर किया और एक जुमले में समेट दिया। किसने? उसी ने जिसने कुरान नाजिल किया। कुरान अल्लाह का कलाम है ना, उसी परवरदिगार ने ये तीन आयतों को और मुख्तसर किया और एक जुमले में समेट दिया। अलबत्ता वो कुरान नहीं बना, वो हदीसे कुदसी बनी। और क्या जुमला? ये तीन आयत, हुम फातिमतो व अबूहा व बालुहा व बनुहा। ये फातिमा, इसके बाद अबूहा, ये आयत नंबर 79, व बालुहा ये आयत नंबर 80, व बनुहा ये आयत नंबर 81। अब ये एक अलग मौजू बन जाता और बन सकता है, लेकिन फिलहाल तो मेरा असल मौजू रिजाए जहरा ही इतना बड़ा है कि मैंने कहा कम से कम अशरे का उन्वान है जो खमसे में मुकम्मल करना। अब आइए नमाज का पैगाम। नमाज के फौरन बाद वो तीन आयतें शुरू हो रही है जिसे अगर आप समेटें तो अबूहा व बालुहा व बनुहा। पहली आयत, अब कुरान ने कहा कि नमाज पढ़ो, नमाज के तीन औकात बताए, उसके बाद वाली आयत है वह मिनल लैल, एक जुमला शुरू में कह दूं ये रिसालत के हवाले से, वह मिनल लैल और रात के वक्त वह तहज्जुद बे नमाज तहज्जुद पढ़ो या नमाज शब। हर पढ़े लिखे मोमिन को पता है कि नमाज शब उम्मत पर मुस्तहब है, रसूल खुदा पर वाजिब, रसूल खुदा के लिए छठी नमाज, स्पेशल नमाज। तो आयत भी बिल्कुल अलग आ रही, ये आयत को इससे पहले वाली नमाज की आयत से नहीं मिलाएगी, वो आयत मुकम्मल हुई, इन्ना कुरान अल फज्र काना मशहूदा, फिर वो गोल दायरा आयत मुकम्मल। उसके बाद रात के वक्त नमाज तहज्जुद पढ़ो नाफिलतन लक, कुरान ने कहा ये तुम्हारे लिए एक इजाफा, उम्मत के लिए नहीं तुम्हारे लिए, उम्मत के लिए पांच नाफिला इजाफा एक्स्ट्रा तुम्हारे लिए, लक तुम्हारे लिए। फिर कुरान ने कहा सारब्बो का यब असका मकाम महमूदा, और इस नमाज की वजह से अल्लाह तुम्हें मकाम महमूद पर फायज करेगा। मकाम महमूद किसे कहते हैं, बस ये समझ लीजिए कायनात के हाईएस्ट स्टेटस का नाम है मकाम महमूद। ना अल्फाज में उसकी तशरी की जा सकती है, ना हमारी और आपकी ये महदूद अकलें सही मानों में उसको महसूस कर सकती हैं, क्योंकि मकाम महमूद असल में तो कयामत के मैदान में जाहिर होगा। तो अब दुनिया, हम दुनिया में रहने वाले, हमारी अकलें इसी दुनिया की चीजें महसूस कर सकती हैं, माँ के पेट में मौजूद बच्चा उसकी दुनिया वही है, वो बाहर की दुनिया के बारे में उसको बताओ समझाओ सब कुछ करो, वो सही मानों में उसकी हकीकत नहीं महसूस कर पाएगा, और इस दुनिया में आने वाला आखिरत की सही हकीकत महसूस नहीं कर पाएगा। मकाम महमूद असल में आखिरत से ताल्लुक रखता, बस ये समझ लीजिए हाईएस्ट स्टेटस इन द यूनिवर्स, पूरी कायनात का सबसे हाईएस्ट जो स्टेटस है वो मकाम महमूद है। कुरान ने कहा ऐ हबीब ये तुम्हें मिलेगा, लेकिन आयत जो है ना उससे बजाहिर ऐसा लग रहा है, बजाहिर को याद रखिएगा, बजाहिर ये लग रहा है कि ये मकाम में महमूद तुम्हें नमाज शब की वजह से मिलेगा, नमाज तहज्जुद। आपको मालूम है हम और आप हकीर जलील गुनाहगार पस्तरीन इंसान, लेकिन हमसे कहा गया कि पैगंबर के लिए कुछ दुआएं करो, हमारी हैसियत क्या, लेकिन हमसे कहा गया कुछ दुआएं तुम्हें करना है रसूल के लिए। एक तो बहुत मशहूर है हर एक को पता है अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, ये दुआ अल्लाहुम्मा जब आता है वो दुआ होती है, रसूल आले रसूल के लिए हमसे दुआ करवाई जा रही है, ये अलग मसाला कि हम क्या, हमारी हैसियत क्या, हमारी बिसात क्या और हम दुआ करें, कुछ है इसके पीछे लॉजिक। और एक ये दुआ अल्लाहुम्मा बअस्हो मकामम महमूदा, ये हम लोगों से दुआ करवाई जाती है, आए खुदा रसूल को मकाम में महमूद अता फरमा, हम क्या, हमारी हैसियत क्या, हम ये दुआ हम करें तो कैसे करें। लेकिन है चुनाचे अजान के बाद की दुआओं में भी है कि रसूल के लिए ये दुआ मांगो, और जो पैगंबर की जियारत हम पढ़ते हैं 17 रबी अव्वल के विलादत के दिन, 28 सफर को वफात के दिन मदीने के अंदर जब हज और उमरे पे जाए, उसके आखिर में भी यही, क्या है खुदा इनको मकाम महमूद अता फरमा, हम दुआ करते हैं अल्लाह से। तो ये असल में हमारी दुआ नहीं, लेकिन वो हमें याद दिलाना है कि रसूल के मकाम को पहचानो, ये मकाम महमूद इनके पास है। लेकिन कुरान ने क्या कहा कि मकाम महमूद है नमाज शब की वजह से, हमें तो पता है कि रसूल के पास है मकाम महमूद, कुरान ने एक लिंक ये मिलाया। अब आइए सुनिए कि रसूल खुदा नमाज शब पढ़ते, कुरान का पढ़ो नाफिलतन लग, तुम्हारा उम्मत का मसला अलग, ये उम्मत के लिए नहीं तुम्हारे लिए एक एक्स्ट्रा नमाज, इसका फायदा ये बताया कि इससे तुम्हें मकाम महमूद मिल रहा, हम और आप पढ़ेंगे तो हमें भी कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, और मिलेगा इंशाल्लाह, नमाज शब की फजीलतें हमको मालूम। अच्छा अब यहां पे एक बहुत अहम बात, ये नमाज शब कुरान जो कह रहा मकाम महमूद मिल रहा है नमाज शब से, और पैगंबर नमाज शब कहां अदा करते हैं, पैगंबर की मस्जिद, रसूल खुदा की मस्जिद, इस दुनिया की दूसरी अहम तरीन नमाज की जगह, पहले खाने काबा दूसरी मस्जिद नबवी, सारी दुनिया इस्लाम मस्जिद नबवी की नमाज के लिए तड़पते, بلکہ یاد رکھیے کہ اگرچہ شرعی اعتبار سے مسجد النبوی کی نماز کا ثواب دوسرے نمبر پر ہے یعنی خانہ کعبہ کے بعد، لیکن کتنا اہم مسئلہ اسلام نے بتا دیا، سب سے زیادہ ثواب کعبے کا ہے. تو کیا ہونا چاہیے، جو آدمی حج اور عمرے پہ جائے نا اسے کہا جائے ساری نمازیں کعبے میں پڑھو، یہ تو سب سے زیادہ نہیں. ہر حاجی اور عمرہ کرنے والا مدینہ ضرور آتا وہاں کی نماز کے لیے، یعنی وہ زیادہ فضیلت کی جگہ چھوڑ کے بظاہر ذرا کم فضیلت کی جگہ پہ آ رہا. تو کچھ تو مسجد نبوی میں ہم کو ملتا ہے نا، کہ جس کی بنا پہ کہا گیا کہ کعبے کو چھوڑ کے آؤ. جتنے دن آپ مدینے میں رہتے ہیں، کون حاجی آپ ایسا ہے جو کبھی جو حج کرے وہ مدینے نہ جائے؟ بہت مختصر صحیح، 8 دن نہ صحیح، 5 دن نہ صحیح، 3 دن نہ صحیح، 1 دن صحیح جاتا تو ہے نا. کون عمرہ کرنے والا ہے جو مسجد النبوی نہیں جاتا؟ جتنی دیر آپ مسجد النبوی میں گزاریں گے اتنا ٹائم آپ کعبے کا کاٹیں گے. لیکن کسی کو اس پر اعتراض ہے؟ کسی نے اس کی مخالفت کی؟ کہیں سے کوئی آواز بلند ہوئی؟ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. تو مسجد النبوی کی نماز بہرحال اتنی اہمیت رکھتی کہ عام قانون کے اعتبار سے دوسری اہم ترین نماز، لیکن اگر غور کرے تو کبھی کبھار وہ کعبے جیسی نماز ہو رہی اور اللہ کے رسول وہیں پر اپنی ہر نماز وہاں پڑھتے، نماز تہجد نہیں پڑھتے. نماز تہجد جو پیغمبر کو مقام محمود دے رہی ہے، توہین والا جملہ نہ بنے، میں انتہائی معذرت خواہ کہ یہ مقام محمود نماز فجر، ظہرین یا مغربین نہیں، قرآن کہتا ہے نماز شب. نماز شب پیغمبر اس جگہ نہیں پڑھ رہے جو مدینے میں سب سے افضل جگہ مسجد النبوی. پھر کہاں پڑھتے ہیں؟ حجرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. وہ نماز جو پیغمبر کو مقام محمود عطا کر رہی ہے وہ انجام دی جا رہی ہے فاطمہ کے حجرے. آج بھی مسجد النبوی میں حجرہ فاطمہ کے اندر وہ ستون موجود ہے جس کا نام ہے پلر آف تہجد یا ستون تہجد. سارے مسلمان مانتے ہیں کہ پیغمبر یہاں پہ نماز شب پڑھا کرتے تھے، بلکہ وہ جو ایک مشہور روایت ہے جس میں رضائے زہرا کے حوالے سے ایک میسج اور آ رہا ہے، تو چلیں وہ روایت پڑھ لیں. اور یہ وہ یہیں کی ملا محسن فیض کاشانی نے یہ روایت نقل کی. ہماری حدیث کی 4 بہت اہم کتابیں ہیں جو شروع زمانے میں لکھی گئیں. 4 کتابیں ہیں، لکھنے والے 3 ہیں، تینوں کے نام ہیں محمد، محمد ابن یعقوب کلینی کافی، محمد ابن بابائے قمی شیخ صدوق ملا یحضرہ الفقی، محمد ابن حسن شیخ طوسی، تینوں کے نام محمد ہے. چنانچہ یہ لوگ کہلاتے ہیں محمدون الثلاثہ، 3 محمد جنہوں نے حدیث کی 3-4 اہم ترین کتابیں لکھی. یہ ہے شروع زمانے میں. اور آخری زمانے میں حدیث کی 3 اہم ترین کتابیں 3 اور علماء نے جمع کی. جب یہ حدیث کتابیں لکھی نہیں جاتی، کمپائل کی جاتی ہیں، جمع کی جاتی ہیں. اس کے لکھنے والے کو مصنف نہیں کہتے، مؤلف کہتے. یہ تینوں کے نام بھی محمد، بہار الانوار محمد باقر مجلسی علامہ مجلسی، وسائل الشیعہ محمد حر عاملی شیخ حر عاملی، مشہد مقدس میں ان کی قبر آج بھی ہے، امام کے روضے کے قریب، اسی بلڈنگ میں، اسی پریمیسز میں. اور محمد محسن فیض کاشانی الوافی کتاب. اور علم حدیث کے ایکسپرٹ لوگوں کا یہ کہنا، یہ تینوں بھی محمد، کہ ان تینوں محنت سب سے زیادہ علامہ مجلسی نے کی، لیکن حدیث کو سمجھنے کی صلاحیت، جملے بڑے توہین آمیز نہ ہو جائے، وہ ملا محسن فیض کاشان، انہوں نے یہ روایت نقل کی. کیا ہے وہ روایت؟ کہ اللہ کے رسول روزانہ کی طرح آج بھی نماز شب پڑھنے شہزادی کے حجرے میں آئے. رسول نماز پڑھتے ہیں، شہزادی سو جاتی، پھر شہزادی آدھی رات کے بعد اٹھ کے نماز شب پڑھتی. شہزادی کے لیے نماز شب سنت ہے، رسول کے لیے واجب ہے، ٹائمنگ میں تھوڑا سا فرق. خیر میں تفصیل میں نہیں جا رہا، بہت وقت ہو گیا، اصل چیز تو رہی جا رہی. تو وہ جو ایک مشہور روایت ہے جس میں رضائے زہرا کے حوالے سے ایک اور نقطہ آپ کے سامنے آئے گا، وہ یہی کی ہے کہ پیغمبر रोजाना आते हैं, आज भी आ गए। सिस्टम बना हुआ, पैगंबर आएंगे, जहां पे रोज नमाजें शब पढ़ते हैं वहीं पे मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ेंगे। शहजादी का जहां रोज बिस्तर बिछता है, शहजादी वहां बिस्तर बिछा के सो जाएंगे। शहजादी का बिस्तर क्या, ऊंट की एक खाल है जिस पर दिन में चारा रख के जुलजना, जैसे जो मेरे मौला का घोड़ा है उसको चारा दिया जाता है, रात को उसी को झाड़ के उसके ऊपर शहजादी सो जाती है। ये बेहतरीन मैट्रेस पे सोने वाली खवातीन, बेहतरीन फर्नीचर खरीदने वाली खवातीन, कनिजान सैयदा होने की दावेदार शहजादी के बिस्तर को भी देखें तो बिस्तर दिन भर जानवर के खाने में इस्तेमाल होता है, चारा खाने में, और रात को वही झाड़कर कायनात की अफजल तरीन खातून वो उसको अपना बिस्तर बना के सोती हैं। तो पैगंबर आए नमाज शब के लिए, शहजादी बिस्तर बिछा रही थी, तैयारी कर रही थी, पैगंबर ने आके जुमला कहा, चार जुमले कहे कि बेटी फातिमा तुम सोने की तैयारी कर रही हो तो एक बात याद रखो कि हमेशा सोने से पहले पूरा कुरान खत्म कर लिया करो, तमाम अंबिया को और मुझे राजी कर लिया करो, तमाम मोमिनीन और मोमिनात के दिल खुश कर लिया करो, एक हज और एक उमरा कर लिया करो। ये कहा, अल्लाहु अकबर, नमाज तहज्जुद शुरू। अभी हमारे आपके लिए, शहजादी कहती है कि बाबा का फरमान मैंने सुना, मैं घबरा के वहीं बैठ गई, वरना तो रसूल नमाज शुरू करते थे, शहजादी बिस्तर पर जाके सो जाती थी, मैं तो घबरा के बैठ गई। बाबा की नमाज शब खत्म हुई या पूरी नमाज ना सही, आपको पता है नमाज शब तो दो दो रकत करके है, बीच में वक्फा आया, मैंने घबरा के कहा, बाबा ये आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी ये कहकर कि हर रात इंसानी ताकत से बाहर, नामुमकिन काम, हर रात को हज और उमरा करो कैसे मुमकिन, एक हज चार रातों में पांच रातों में होता है, और फिर ये कि तमाम अंबिया को राजी और खुश कर लो, तमाम मोमिनीन को खुश करो, तमाम अंबिया को राजी कर लो, एक कुरान खत्म करो, बाबा ये कैसे मुमकिन है। कहा बेटी बहुत ही आसान, हर रात सोने से पहले तीन बार कुल हुवल्लाह पढ़ो, कुल कुरान हो गए। अच्छा ये वाला टुकड़ा हमारे यहां बहुत मशहूर, और हर रात सोते वक्त सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर कह दिया करो। कुरान के अलावा कायनात का बेहतरीन कलाम इसको करार दिया है मासूम, कुरान तो कुरान, इसके अलावा जो बेहतरीन दुआ, बेहतरीन तस्बीह, बेहतरीन जिक्र खुदा, बेहतरीन कलाम है वो ये। और आपको ये भी मालूम होगा कि इमाम ने कहा चार जो टुकड़े सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, इसे काबे के चार कोने समझो। अब फिर बहुत तफसील है लेकिन नहीं आया, वक्त ही मेरे हाथ से निकला जा रहा है, पता नहीं मुझे क्या हो गया आज। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर एक बार कह दिया करो, यानी सोते वक्त इंसान का आखिरी जुमला है वल्लाहु अकबर, अल्लाह इस कायनात में सबसे बड़ा, भाई के बाद सारे मसले खत्म। अब ना नमाजें कजा होंगी, ना इंसान हराम की जानिब जाएगा, ना इंसान बेहिजाबी की जानिब जाएगा, ना इंसान हराम गजा खाएगा, अल्लाह सबसे बड़ा। सबसे बड़ा वो है तो किसका डर किसका खौफ, ये सोते वक्त तुम्हारा आखिरी जुमला ही है। और वो जो कहा कि सारे अंबिया को राजी करो तो दुरूद भेज दिया करो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन वल व जमीइल अंबिया, सब राजी हो गए। अंबिया इससे राजी नहीं होते कि आप किसी के नाम एक प्लॉट लिख दें, आप किसी के नाम एक मकान दे दें, आप किसी को एक गाड़ी दे दें, आप किसी नबी की बीवी को एक जेवरात का सेट दे दें। अंबिया राजी होते अल्लाहुम्म सल्ली अला मोहम्मद से, अइमा राजी होते इस जिक्र से, रसूल खुदा राजी होते इससे, सबको राजी करो ये दुरूद के जरिए, और तमाम मोमिनीन और मोमिनात को खुश करो सिर्फ एक इतना कहकर, अल्लाहुम्मा अग़फिर लिल मोमिनीन वल मोमिनात, अय खुदा तमाम मोमिन मर्दों और औरतों के गुनाहों को माफ करो। जब आपके गुनाह माफ होंगे मोमिनीन और मोमिनात के इस दुआ की वजह से, कयामत में जब पता चलेगा कि वैसे तो तुम्हें इतनी सजा मिलनी वाली थी फुला फुला गुनाह की वजह से, मैं शहजादी की बात नहीं कर रहा हूं, यानी शहजादी नहीं, हम और आप जो पढ़ेंगे रात को, पता चला कि फुला मोमिन ने आज रात को ये दुआ पढ़ के तुम्हारे गुनाह माफ करवाए, इतना खुश हो जाएगा वो। जो थोड़ा बहुत आप सुनते हैं कि मरने वाला नमाज वहशत पढ़िए बहुत खुश होता कि उसका अजाब आपने ये नमाज वहशत से दूर कर दिया। तो इसी तरह अल्लाहुम्मा अग़फिर लिल मोमिनीन वल मोमिनात, शहजादी राजी हो, तमाम मोमिनीन और मोमिनात राजी होते हैं इससे। का यह रात को मुझे मुख्तसर से चार काम बताए पैगंबर ने, लेकिन बात क्या हो रही थी कि चार बातों वाली हदीस कहां आई? शहजादी के हुजरे में। शहजादी के हुजरे में क्यों आई? क्योंकि पैगंबर वहां नमाज शब पढ़ने आते हैं, नमाज शब पैगंबर को मकाम में महमूद अता करती। तो रिसालत मकाम में महमूद पर जाती है शहजादी की मदद से। अब ये बहुत लंबा जुमला हो जाएगा, लेकिन जो असल मौजू है वो ना रह जाए। अब यहां पर एक बात मैं और अर्ज करूं, वो ये कि शहजादी, इतना तस्करा हो रहा है रिजाए जहरा, शहजादी राजी होती। किस चीज से शहजादी राजी होती? वो बात अभी आगे बढ़ रही थी और अभी बात आगे बढ़ेगी। यहां रुक के एक बात कह दू कि अभी तक मैंने सिर्फ सूरह बनी इसराइल की दो आयतों का तर्जमा किया, 78, वो नमाज के बारे में थी। नमाज और शहजादी का एक रब और है जो मैं सीरत रसूल में मिलाने वाला हूं। वो रब क्या है नमाज और शहजादी की सीरत का? वो रब दिए कि आज की दुनिया मुसीबतें, परेशानियां, प्रॉब्लम, हर आदमी को कोई ना कोई परेशानी घेरे में लिए हुए। कोई मोमिन नहीं कह सकता, कोई मोमिना नहीं कह सकती कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बल्कि यहां तो हालत यह है कि एक प्रॉब्लम आप दूर करते हैं, इतनी देर में चार प्रॉब्लम और आ जाते हैं। ये COVID-19 खुद अपनी जगह पूरी दुनिया के लिए क्या मैसेज लेके आ गया, लेकिन इसके अलावा इसके हवाले से फिर रोजगार और रोजी के मसाइल, माली परेशानियां और कितने सारे मसाइल मोमिन को, मोमिना को हर वक्त परेशान करते हैं। और इसके लिए परवरदिगार ने जो बेहतरीन चीज हमें बताई है कुरान में, वो है नमाज। फिर वही बात नमाज की आ गई, वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, कुरान की आयत। जब अल्लाह से मदद मांगना है तो सब्र के जरिए मदद मांगो और नमाज के जरिए। कुरान ने कहा, तरीका बताया भाई, जब कभी अल्लाह से मदद मांगना है, कुरान ने, कुरान की आयत है। हदीस भी बहुत अहम होती है, लेकिन कुरान की आयत जिसमें कोई किसी किस्म की पेचीदगी ही नहीं है, ज़ईफ है कि मोतबर है, और अल्फाज भी इतने आसान। कुरान शुरू किया आपने, कुरान ने ऐलान किया, कहो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तुझसे ही मदद चाहते। तो हमने कहा खुदा बंदा, हम तुझसे मदद चाहते, लेकिन तू हमें मिले कहां, है हर जगह, कॉन्टेक्ट कैसे हो? का वस्तईन, वही लफ्ज आया जो इय्याका नस्तईन में, वस्तईन बिस्सब्र वस्सला, मदद मांगो नमाज के जरिए। या ऐसा ही है जैसे कोई आदमी आपसे कहे कि भाई कोई आपको प्रॉब्लम पेश आ जाए, आप मुझको बुला लीजिएगा। हमने कहा भाई कैसे आपको बुला, ये मिसाल अल्लाह के लिए तो ठीक नहीं है, क्योंकि अल्लाह तो हर जगह है, लेकिन कुछ समझ में आए। कहा ये ले लीजिए मेरा टेलीफोन नंबर, इस पे आप कॉन्टेक्ट कीजिएगा, मैं आपको अवेलेबल हूं। यही तरीका होता है ना, जब कोई आपको आगे बढ़ के कोई ऑफर करे तो आप कहेंगे भाई कहां आपको ढूंढते फिरेंगे, वहां कहा कि तुझसे मदद चाहते। हमने कहा खुदा मदद तुझसे चाहते, लेकिन तू हमें मिले कहा कि हम मदद तुझसे मांगे। कहा वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, नमाज के जरिए मदद मांगू, ये नमाज है जहां मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। सलात नमाज मेराज मोमिन है, मैं दोबारा मेराज की तरफ नहीं जाता। और इसीलिए इमाम की एक हदीस है जिसको कल वाले एक जुमले के साथ मिलाइएगा। इमाम से पूछा गया मौला बेहतरीन नमाज किसकी, नमाज तो हम सब एक जैसी पढ़ते हैं, तो इसमें बेस्ट नमाज किसकी है, कौन सी है? कहा जिसका कुनूत सबसे लंबा, पूरे नमाज में कुनूत वो चीज है कि जिसमें हम अल्लाह से मांग रहे होते हैं, बाकी तो हम अल्लाह की तारीफ ही कर रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, दूसरा सूरा पढ़ रहे हैं, सुभान रब्बिल अजीम, सुभान रब्बिल आला, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, कुनूत व वाहिद इबादत। वैसे तो आप नमाज कहीं भी कोई दुआ पढ़ सकते हैं, लेकिन जो अरकान नमाज है, जो नमाज का स्ट्रक्चर, उसके अंदर कुनूत वो वाहिद जगह है जहां पे हम दुआ मांगते हैं, बाकी सब जगह पे या अल्लाह की तारीफ है या कुरान। का जिसका कुनूत सबसे लंबा हो, यानी जिसकी दुआ सबसे लंबी हो, वो नमाज बेस्ट, क्योंकि जो तोहफा अल्लाह को मोमिन से पसंद है वो दुआ। कल बात आई थी ना, और आज आप नमाज के हवाले से सुना दुआ। तो जो दुआ आपकी कहीं पूरी ना होती है नमाज में मांगी। अगर आपको बहुत सारे उलमा बहुत सारी नमाजें बताएंगे, फला मसले की ये नमाज, फला की ये नमाज, इसमें इतने सूरे हैं, ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये आयत, حتیٰ یہ کہ مسجد کوفہ میں ایک بہت اہم نماز ہے، نماز حاجات، جس میں 7 سورے ہیں. وہ بات کو جتنا پھیلانا چاہیں پھیلا دیں. مختصر ایک بات سنیے، کچھ نہ پڑھیے، صرف ایک 2 رکعت نماز فجر کی طرح سے پڑھیے، اس سے بھی مختصر کر دیجیے. الحمد کے بعد دوسرا سورہ بھی نہ پڑھیے، اور اس کے بعد آپ اللہ سے دعا مانگیں، اور چاہے تو اس کے قنوت میں اللہ سے دعا مانگیں، یہی کافی ہے. وہ کوئی بہت لمبی نماز وہ پڑھے تو اچھا، لیکن ضروری نہیں ہے. یہ مختصر، وہ جو اللہ نے کہا نماز سے کے ذریعے مدد چاہو نا، تو وہ مختصر نماز 2 رکعت خالی، جو ہمارے علماء کا طریقہ بھی. اور یہیں پہ میں وہ بات کہہ رہا ہوں کہ اب جب یہ نماز کی اتنی طاقت ہے کہ آپ کے مسئلے حل کر سکتا ہے، تو جو نماز سے طاقتور ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، کل بھی میں نے عرض کیا تھا دونوں معراج کے تحفے ہیں، لیکن دونوں کا اسٹیٹس ایکول نہیں ہے. فاطمہ اصول دین میں ہے، نماز فروع دین میں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز کم ہے یا اس کی اہمیت نہیں ہے، میں توہین کر رہا ہوں، وہ نہیں، لیکن فاطمہ بہرحال فاطمہ ہے. شہزادی سے مانگی، جو نماز کا فائدہ ہے نا شہزادی. اب نماز اور شہزادی کو میں نے 1.5 دن آپ کو سمجھایا، آج کی مجلس آدھی ہو چکی، تو اب مزید اس پہ میں وقت نہیں لگاتا ہوں، مزید وقت نہیں لگاتا ہوں. شہزادی جو نماز کے بینیفٹ ہے وہ سب شہزادی سے آپ کو ملیں. اور یہاں پہ علماء عموماً ایک واقعہ اس لیے نقل کرتے ہیں کہ بہت مشہور ہے اور بہت ہی اتھینٹک آدمی کا واقعہ، میں صرف اشارہ کروں گا، اس کی طرف نہیں جاؤں گا. اس آدمی کا کہ سید مرتضیٰ کشمیری، آج نہیں 200 سال پہلے کے بہت مقدس عالم، یہ کہہ دینا کہ مجھے گھر کا قفل کھولنا ہے، تو حضرت موسیٰ کی ماں کا نام بتائیے، اور ان کا کہنا کہ میری ماں یعنی فاطمہ زہرا مادر موسیٰ سے افضل ہیں، تو جو ان کے نام سے ملے گا مادر موسیٰ کے نام سے میری ماں کے نام سے بھی ملے گا. بہت مشہور واقعہ پڑھا جاتا. اب ایک اور واقعہ سن لیجیے. دیکھیے میں پھر بتا رہا ہوں، آج کی اس پریشانی کی دنیا میں مومنین کو مسئلے کا حل چاہیے، لیکن آپ اتنا لمبا اس کو مسئلہ بتا دیں کہ 100 دفعہ یہ پڑھو، 200 دفعہ یہ پڑھو، 500 دفعہ یہ پڑھو، اور یہ اتنی لمبی دعائیں، اس کے دل کو بہت لگی ہے، وہ شاید کر بھی لے گا، لیکن بہت سے لوگ تو وہ دعا دیکھ کے ہمت ہار جاتے ہیں. اتنا لمبا عمل. اردو کا ایک شعر ہے، شعر و شاعری تو ایک تو مجھے ویسے ہی کوئی طبعی فطری طور پہ رغبت نہیں ہے، اور پھر ممبر پہ تو میں کم ہی پڑھتا ہوں. اس کا خلاصہ سن لیجیے، شعر کا خلاصہ کہ جی وہ سر کے درد کے لیے حنا لگانا بہت مفید چیز ہے. شعر کا شعر پڑھ رہا ہوں، اس کی نثر بنا کے، شاعروں کے اعتبار سے تو شعر کو ذبح کر رہا ہوں، ذبح. لیکن بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ وہ درد سر کے لیے حنا لگانا بہت مفید ہے، لیکن خود حنا کا پیسنا اور پھر لگانا، اس کا پیس بنانا، یہ خود بھی تو ایک درد سر ہے. اب آج کل تو ہر چیز بنی بنائی مارکیٹ میں ملتی ہے، لیکن وہ مہندی کی پتیاں لیجیے اور اس کو پیسیے اور پھر اس کا رنگ نکالیے اور پیس، وہ خود ایک درد سر ہے. تو بعض اوقات تو ایسی دعائیں بتائی جاتی ہیں کہ مومن کہتا ہے جو میرا اصل مسئلہ ہے اس سے زیادہ مشکل تو یہ عمل بتایا جا رہا. اور میں ہر چیز میں آسانی شریعت کے دائرے میں رہ کر، یہاں بھی سن لیجیے، لاسٹ سینچری. اب دیکھیں لاسٹ سینچری سے آپ کے ذہن میں کوئی 200 سال پرانی بات نہ ہے، میں لاسٹ سینچری کا آدمی ہوں، امام بارگاہ علی رضا لاسٹ سینچری میں بنی ہے، اس کے آرگنائزر سب لاسٹ سینچری والے، 20 سال پہلے ہی تو ختم ہوئی ہے لاسٹ سینچری. لاسٹ سینچری کے سب سے مشہور مرجع، ضرورت نہیں ہے نام لینے کی، پوری دنیا جانتی، اتنے سارے ہمارے مراجع گزرے ہیں 1400 سال میں، دنیا کے کتنے لوگوں کو ان کے نام پتا ہے، مومنین کو پتا ہو تو پتا ہوں، لیکن بہت پرانی بات بھی نہیں، 30-35 سال پہلے مراجع گزرے جن کا نام پوری دنیا، سب سے مشہور مرد. ان کے بارے میں ایک جملہ ہے کہ جب وہ نجف اشرف میں مقیم تھے، آج بھی وہ مکان ان کا محلہ حویش میں، محلہ حویش، جب آپ مولا کے حرم سے باب قبلہ سے نکلیں سیدھا چلیں تو بالکل اسٹارٹ میں ہی رائٹ ہینڈ پر آگے محسن حکیم کا روضہ آتا ہے، بابئی محلہ حویش. وہ جتنے عرصے نجف میں رہے ان کا ایک طریقہ تھا، یہ میں بہت موضوع سے ہٹ کے تھوڑی بات کر رہا ہوں تاکہ ذرا واقعے کی اہمیت پتہ چلے. اور وہ یہ تھا کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد مولا کے روضے میں آتے تھے اور زریف کی زیارت کرتے تھے. اچھا مولا کے روزے میں جہاں آج کل مرد حضرات زری کی طرف جاتے ہیں تو مولا کے پائیں کی داخلے سے پہلے رائٹ سائڈ پہ علامہ حلی کی قبر ہے، لیفٹ سائڈ پہ مقدس اردبیلی کی کمروں میں علامہ حلی کی قبر سے ملی ہوئی، علامہ حلی کی قبر سے ملا ہوا چھوٹا سا حجرا، اس میں تین قبریں. یہ وہ علاقہ ہے جہاں لیڈیز کو آنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن صرف یہ جو چھوٹا حجرا ہے یہاں تک لیڈیز کو آنے دیتے ہیں، اگرچہ اصول کے اعتبار سے یہاں بھی ان کو نہیں آنے دینا چاہیے کیونکہ یہ وہ اس پورشن میں ہے جو جینٹس کا، لیکن صرف یہاں پہ اس میں تین قبریں. اور یہ جو عظیم ترین مرجے کا میں نے نام لیا، یہ روز آنا مولا کی زری کی زیارت کرتے ہی، میں 200 سال پہلے کی بات نہیں کر رہا، میں مشکل سے 40 سال پرانی بات کر رہا ہوں، 45 سال پرانی. وہاں تین قبریں، وہ تینوں قبروں پہ ایک چھوٹے سے کمرے میں، ہمارے خیال میں شاید 10 آدمی آ جائیں تو وہ بھر جائے، لیڈیز بھی وہاں جا سکتی ہیں، ہم تو اپنے قافلے کو لے جاتے ہیں. یہ قبر تو ہے شیخ محمد حسین اصفہانی کمپائنی کی، 1940s کے بہت ہی عظیم ہمارے حوزہ علمیہ کے استاد، بہت ہی عظیم آغا خود جیسا عظیم مرجے انہی کا شاگرد ہے، ایسا شاگرد جو ہمیشہ ان کی تعریف کرتا رہا، آغا روحانی جیسا عظیم مرجے انہی کا شاگرد، 70s کے جتنے مراجے سب ان کے شاگرد تھے، اور ایسے شاگرد جو مانتے تھے کہ ایسا استاد نجف میں بہت کم گزرا، شیخ محمد حسین. آج بھی ان کے جو تھیوریز یا نظریات ہیں وہ تمام مراجع اپنے درس میں بیان کرتے ہیں. وہاں جاتے ہیں اور اسی حجرے میں دوسری قبر ان عظیم مرجے کی جن کا میں واقعہ بتا رہا ہوں ان کے بیٹے کی ہے، اور تیسری ایک قبر ہے آیت اللہ نصر اللہ بنی صدر. تین قبریں، وہ تینوں پہ جاتے ہیں الگ الگ، چھوٹے سے ہوئے الحمد پڑھتے ہیں، 3 بار قل ھو اللہ پڑھتے ہیں، روزانہ کا ان کا طریقہ. اب اس کے اندر دو قبریں تو بہت ہی سمجھ میں آ رہی ہیں، شیخ محمد حسین علمی دنیا کے لوگ جانتے ہیں کہ میں نے کس کا نام لے لیا، اور ایک عظیم مرجع کے بیٹے. جب آپ اس روم میں داخل ہوں گے نا تو بالکل آپ کی بیک پر مرحوم آیت اللہ خوئی کی قبر آتی ہے صحن کے آخر میں. یہ میں صرف اس لیے لوکیشن بتا رہا ہوں کہ اگر کبھی کوئی آدمی اس کو مس کر رہا ہے تو آپ مس نہ کریں. تیسری قبر ہے آیت اللہ نصر اللہ، اور بہت ہی زیادہ یہ اٹیچ تھے اس عظیم مرجے سے، لیکن خالی دوستی کی وجہ سے نہیں جاتے، ان کے کچھ واقعات بھی. اس میں سے ایک واقعہ یہ، میں نے صرف اس لیے اتنا تعارف کرایا کہ پتہ چلے جن کا واقعہ ہے وہ کتنے عظیم. یہ ہمدان کے ایک عالم، عالم کیا مرجے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے پاس ایک آدمی آیا ہمدان، میں بہت پرانی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ ابھی کوئی 50-60 سال پرانے سارے واقعات، اور آنے کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ میں نے فلاں آدمی کو ایک بڑی رقم قرضے میں دی تھی، اس نے واپس نہیں کی اور وہ مر گیا، اب میں جا کے اس کے وارثوں سے مانگتا ہوں، وہ منع کرتے ہیں، میرے پاس رسید ہے کہ یہ قرضہ میں نے دیا. وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، اس نے آدمی نے قرضہ واپس کر دیا. نے کہا کوئی ثبوت لا، کوئی گواہ یا کوئی رسید، کچھ نہیں ہے لیکن دے بھی نہیں رہا. اور میں گیا اس شہر کا جو چیف جسٹس ہے، جو بھی ہوگا اس وقت کا، عبد الکریم لواسانی نام ہے، اس کے پاس کیس لے کر، یہ رسید ہے میرے پاس ڈاکومنٹ کہ میں نے اس کو قرضہ دیا اور وہ منع کر رہے ہیں، تو واپس نہیں کر رہے. اب آپ اتنے بڑے عالم، اس وقت تو ہمدان کے سب سے بڑے عالم آپ ہیں، آپ ہی کی بات وہ مان سکتا ہے تو مان سکتا ہے، اور تو کسی کی نہیں ہے. یہ دیکھیں ثبوت، ہاں ثبوت دیکھا، بالکل پکا ثبوت، گئے ان کے پاس، احترام میں کھڑا ہو گیا، اتنا عظیم عالم آیا ہے ہمارے پاس، وہ خود بھی عالم تھے. کہا کہ یہ کیس ہے، تم کیوں اس کا ڈیسائیڈ نہیں کرتے ہو، یہ تو بالکل 2 جمع 2 4 کی طرح ہے، قرضہ دیا گیا، یہ رسید ہے، سامنے والے کے پاس کوئی پروف نہیں ہے، وہ ایسے ہی کہہ رہے ہیں کہ واپس کر دی. کہا کہ نہیں میں جانتا ہوں، وہ جو بیوہ عورت ہے تو غریب بھی ہے اس وقت، اور انتہائی نیک و دیندار، سورج مغرب سے نکل سکتا ہے، لیکن میں اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے. اگر وہ یہ کہہ رہی ہے کہ قرضہ واپس کر دیا گیا، مجھے تو 100% یقین. कहा तो फिर उसके पास कोई दस्तावेज कोई रसीद कुछ हो? कहा वो कह रही है रसीद थी तो खो गई। अब इस तरह तो मामले नहीं होते। इन्होंने कहा कि भाई शरई तो हुक्म यही कि इस आदमी के पास रसीद है कि मैंने दिए, वापसी की रसीद नहीं, वो तो देना पड़ेगा, ये शरई मसला ये। कहा कि क्योंकि मैं जानता हूं कि ये मोमिना, इतना मुझे यकीन है इसके ऊपर, इसकी दीदारी, इसके तकवे, इसकी परहेजगारी पर, दौलत दुनिया के लिए झूठ तो नहीं बोले। जब तक मैं यहां पे हूं मैं तो इसके खिलाफ केस नहीं करूंगा। जब मेरा यहां से ट्रांसफर हो जाए, कोई और आ जाए, वो जाने आप जाने। इतना साफ सा जवाब दे दिया इतने बड़े आलिम को। खैर वापस आ गए। चंद दिन गुजरे, वही चीफ जस्टिस इनके घर आता है, अब्दुल करीम लवासानी, और कहता है चले मेरे साथ, जिस आदमी की आप हिमायत में आए थे ना उसके घर चले, उसके चेहरे पे हम दोनों मिलके थूके। अच्छा, अब ये कल्चर है थूकने का, मतलब ये काम सा तरीका है इराक में भी और बाकी कई मुल्कों में, थूके। कहा भाई क्यों? कहा वो मोमिना, वो बेवा रसीद लेके आ गई, पक्की पक्की रसीद है, बिल्कुल आप देखिए, आप तो खुद एक मुश्तहिद और मर्जी हैं, चेक कीजिए रसीद सही है कि नहीं। कहा सही, कई रसीद कहां से मिल गई? तो चले उसी औरत से पूछ लेते और फिर उसकी खिंचाई करेंगे कि जिसने इतना बड़ा इल्जाम लगा दी। गए उसके पास, कहा कि भाई ये रसीद, या तो इतना मसाला था, ये रसीद मिल ही नहीं रही थी। कहा कि मैंने रोजाना मेरे घर पे वो आदमी आता है, शोर शराबा करता है, पूरे महल्ले में मेरी तौहीन होती है, बदनामी होती है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे यहां तो खाने के पैसे नहीं होते हैं बाज़ औक़ात, कहां से दूं मैं उसको, मैं बहुत परेशान। जब कुछ समझ में नहीं आया तो जो आप लोग एक अमल बताते, मैंने वो अमल किया। क्या? 135, ये फातिमा के नाम की अदद है, अदद जैसे 786 बिस्मिल्लाह है, 92 मोहम्मद है, 110 अली है, ये फातिमा 135। कहा कि बस कोई अगर 135 टाइम्स या जहरा कह ले खाली, या जहरा, कल की मजलिस का इख्तिताम भी या जहरा के मानों पे था, आज या जहरा की बरकतों पर, सिर्फ ये कह दे, कोई लंबी चौड़ी दुआ नहीं, कोई वसीला नहीं, कोई वास्ता नहीं, वो जो एक दो रकत नमाज है जिसके बाद 510 मरतबा या मौलाती या फातिमतो अगीसे, नहीं कुछ नहीं, सिर्फ या जहरा, फिर देखे उसका मसला कैसे हल नहीं होता। अगर वो सही, मैंने ये अमल शुरू किया, रोज की तौहीन, रोज की बदनामी, रोज वो आके हंगामा करना, शोर शराबा, पूरे महल्ले में शरीफ एक इज्जतदार औरत। बस जैसे ही अमल शुरू किया, 3 दिन भी नहीं गुजरे, ख्वाब में मेरा शौहर आया। शौहर को मैंने देखा तो अब उस वक्त तो आम हालत में शौहर नजर आता और पता नहीं क्या क्या बातें कब्र की बरजख की पूछती। इस वक्त कहा शौहर से कि तुमने गिला शुरू कर दी कि तुमने हमें किस परेशानी में फंसा दिया कि कर्जा दे दिया, उस कर्जा वापसी की वजह से घर में खाने को कुछ नहीं रहा, गर्चे शरण इस हालत में कर्जा वापस नहीं, लेकिन उसको अपनी मौत का खौफ था ना, दे दिया उसने, और कोई सबूत भी नहीं। कहा नहीं सबूत है, मैंने उससे रसीद ली थी। तो कहा वो रसीद कहाँ? कहा ये रसीद मैंने फुला किताब के अंदर रखी थी, तुम लोगों ने जो मेरे बाद घर का सामान बेचना शुरू किया, देखिए कितनी गुर्बत थी, तो अब ये किताब तुमने बेच दी जिसमें ये रसीद थी। मौत तो अचानक आ जाती, तो बीवी ने कहा वो क्या करूं? कहा मैं बताता हूं, मैं दूसरी दुनिया से इसीलिए आया हूं कि शहजादी ने हुक्म दिया कि जाके तुम्हारा मसला हल करो। ये किताब तुमने बेची, तुम लोगों ने बेची, तुम्हें भी नहीं पता कि कौन खरीद के ले गया, फला आदमी, ये उसका एड्रेस है, वो उस महल्ले में रहता, अभी तक उसके घर में ये किताब है, उसके घर में जाओ, उसके घर में पूरी एक लाइब्रेरी, अब मसलन शेल्फ नंबर 4 पे जाना, इतनी सारी किताबें हैं, उसके अंदर ये 8वीं किताब जो है उठाना, इस किताब के इस पेज नंबर को खोलना, वहां पे रसीद हो। मेरी आंख खुल गई और मैं फिर सुबह सवेरे गई, उसको पूरी सूरत हाल बताई, उसने भी कहा कि वो बहरहाल किताब तो मैंने खरीदी और अगर उसमें आपकी अमानत है तो आप ले जाइए, वो रसीद मेरे किस काम की। तो वही हुआ कि उस कमरे में लाइब्रेरी में मसलन 15 शेल्फ है, शेल्फ नंबर 4 पे 50 किताबें, किताब नंबर 8 का वो पेज खोला, वहां पे रसीद रखी, वो रसीद मिली। अगली सुबह मैंने जाके आगा अब्दुल करीम रावसानी चीफ जस्टिस को दी है और केस का फैसला हुआ है सिर्फ या जहरा कहने से, सिर्फ या जहरा, कोई और लंबी चौड़ी इसके साथ दुआ नहीं, कोई लंबा चौड़ा वसीला नहीं है। वो आगा मुर्तुजा कश्मीरी के वाकये में कि सिर्फ या फातिमा कह के कुफल पे हाथ डाला, कुफल खुल गए। या जहरा क्या कहा, दूसरी दुनिया में गए हुए इंसान को हुक्म मिला के वापस जाओ। तो फातिमा का नाम लेके, जहरा का नाम लेके तुम्हें मेरी बारगाह में मसाला पेश किया गया। हर नाम को सुन के दुआ में डिले हो सकता है, फातिमा का नाम सुन के डिले नहीं हो सकता, जाना है तो। और ये मसला हल हुआ। हम और आप इतने बड़े बड़े हमारे पास अपना मसला हल करने के हथियार हैं, इस्तेमाल करना नहीं जानते। जैसे मुझे उठाकर किसी फार्मेसी में बिठा दिया जाए, एक से एक बेहतरीन दवा है, मुझे नहीं पता कौन सी बीमारी की कौन सी दवा, मैं नहीं इस्तेमाल कर पाऊंगा। लेकिन एक वहां का सेल्समैन जिसके पास डिग्री भी नहीं है, चार पांच साल उस दुकान में काम किया होगा, खट से बता देगा पेट में दर्द है तो ये, बुखार है तो ये, सर में दर्द है तो ये। हमारे पास फातिमा की शक्ल, जहरा की शक्ल, खाली ये नाम, इतने अजीम नाम है, कायनात इन नामों पे चल रही, आज भी आपका बड़े से बड़ा मसला हल हो सकता। तो जहरा, कल आपने फजाइल के हवाले से सुना, आज आपने एक और हवाले से सुन ली। मगर अहले बैत अतहार की जो सबसे बड़ी खसूसियत कुरान ने बताई, सूरह हश्र, ये वही सूरह है जिसके आखिर में अल्लाह के वस्माए हुस्ना है, वल्लाहुल बारी वल मुसव्विर मलिकुल कुदूस सलाम मुहैमन। उस सूरह हश्र में अहले बैत की खसूसियत आई, ये है रिजाए ज़ाहरा। अब इस जुमले से मैं रब कल के मजलिस में रब मिला, वह युसिरूना अला अनफुसहिम वलौ कान बिहिम खसासा। ये लोग खुद जहमत और तकलीफ में होते हैं, दूसरों की मदद करते हैं। युसिरून, जिससे उर्दू में एक लफ्ज है ईसार, ये ईसार से काम लेते हैं, वलौ कान बिहिम खसासा, चाहे खुद ये जहमत में हो, अपने मसले नहीं, हमारे और आपके मसले। ईसार, जो शहजादी के हवाले से तो बहुत वाकयात आपने सुने, घर में फाके हैं मगर दूसरे के लिए चाहे चादर गिरवी रखना पड़े लेकिन मदद की जा रही है। तो ये खाली फातिमा की जिंदगी तक महदूद नहीं है, ये कयामत तक के लिए फातिमा की खासियत है। नहीं, कयामत में भी फातिमा की यही खासियत तो हमारे और आपके काम आएगी। हम और आप तो मारे गए, हमारे आपके ऐसे अमाल भी नहीं है और इतना अकीदा भी नहीं है कि निजात पाए। फातिमा की यही खसूसियत, अलबत्ता ये अलग बात है कि फातिमा कयामत में जहमत में नहीं होंगी, कयामत में तो उन्हीं की बादशाही है। इस दुनिया में जिसने जो दिल चाहे किया, खुद मुसीबतें बर्दाश्त की, चाहने वालों का हर मौके पे ख्याल रखा। और फिर वहीं पे रब्त देता हूं जहां कल रात की बात कही थी मैंने, और फिर इंशाल्लाह शहादत के बाद के मसाइब में तीसरी मजलिस से शुरू करूंगा। अभी दो दिन, एक शहादत की रात थी, एक शहादत का दिन था, तो शहादत ही के मसाइब पढ़ रहा। वही चीज, इस फातिमा की सीरत की अहम तरीन खसूसियत है, जिसके हवाले से मुझे अपनी बहनों और बेटियों और नवासियों और पोतियों को पैगाम पहुंचाना है रिजाए फातिमा का। वो कल शुरू होगा, लेकिन बस ये आखिरी जुमले उससे रब्त मिलेगा कि इतना ख्याल था कि अपने मसाइब की वो इंतहा। फातिमा किसी ऐसी औरत का नाम नहीं है कि जरा सी मुसीबत हो तो हाय वाह वाला शुरू कर दे। इतने मसाइब होंगे कि शहजादी जैसी साबिरा को कहना पड़ा सुब्बत अलैया मसाइब। ये जुमला को मामूली जुमला नहीं है, और जब फातिमा की जबान से निकले, फातिमा की अहम तरीन खसूसियात में से एक ये भी है कि वो सिद्दीका। सिद्दीका कहते ही उसे है जो गलत बयानी ना हो नऊज़ु बिल्लाह, मुबालिगा ना हो नऊज़ु बिल्लाह। जब ये कह दे कि इतनी मुसीबतें पड़ी हैं, मगर इन मुसीबतों के इंतहा में भी फातिमा को इतना ख्याल है अपनी औलाद का। हम और आप भी फातिमा की औलाद, लेकिन वो फिर एक अलग मौजू है जो कल से शुरू। इस वक्त मेरी मुराद वो औलाद, जो पहली मजलिस में मैंने अर्ज किया कि नमाज की ताकत न थी तब भी औलाद की खिदमत के लिए अपनी जगह से खड़ी हो। और आज मैं एक और हवाले से उसी मैसेज को दे रहा हूं, वो ये कि कल क्योंकि शहादत की रात थी, ऐन रात इसलिए मुझे मसायब का एक बीज का टुकड़ा छोड़ना पड़ा। मैंने बताया कि मौला हसनैन को ढूंढने गए और फिर हसनैन आए और मौला नहीं थे। लेकिन यह बीच का वक्त है जब मौला भी बाहर है, मौला जा रहे हैं रोजे रसूल की जान, हसनैन आ रहे हैं रोजे रसूल से, फिर वो आ गए तो उसके बाद के मसाइब। इस दौरान घर में खाली असमा नहीं थी, ज़ैनब और कुलसुम तो थी ना, फातिमा की बेटियां, बेटे गए हुए थे रोजे रसूल पे, बेटियां तो थी, और असमा एक मंजर देख रहे। ये मंजर बाद में असमा ने हसनैन को भी बताया, क्योंकि हसनैन ने बाद में पूछा भी था कि असमा जब माँ दुनिया से जा रही थी तो बाबा उस वक्त रोजा रसूल की तरफ जा रहे थे, हम रोजा रसूल से आ रहे थे, घर में तुम थी, तो बताओ उस वक्त माँ पे क्या गुजर रही थी। तो कहा कि मुझे तो शहजादी ने हुजरे से बाहर सहन में भेज दिया, हाँ सिर्फ मैंने एक अजीब मंजर देखा और उसके बाद हुजरे का दरवाजा बंद हो गया, वो वही अजीब मंजर मेरी आज की मजलिस के मसाइल, बस इतने ही। और वो ये था कि आखिरी मरहला, एक मरतबा हसन नहीं है, हुसैन नहीं है, मौला नहीं है, ज़ैनब है। फातिमा ने ज़ैनब को करीब बुलाया और फातिमा ये नहीं चाहती है कि अस्मा के कान तक आवाज पहुंचे, कौन सा हुजरा है फातिमा, बहुत बड़ा, छोटा सा तो है। ज़ैनब बेटी करीब, अब अस्मा बाहर से देख रही, ज़ैनब करीब आ, फातिमा ने कहा बेटी और करीब आ, जरा उस बेटी से कोई पूछे, 5 साल की उम्र है या 6 साल, माँ दुनिया से जा रही और कह रही है बेटी इतना करीब आ के तेरे कान मेरे होठों के करीब पहुंच जाए। अब अस्मा देख रही है कि शहजादी कुछ कह रही हैं। शहजादी ने ज़ैनब से कुछ कहा और इतनी देर में हसन हुसैन आ, और फातिमा दुनिया से रुख्सत हुई, हसनैन आ, वाह गुरबता की फरियाद बदल, जनाजा उठा जिसके मसाइब में कल रात को पढ़ूंगा इंशाल्लाह अगर कल तक जिंदा रहा। लेकिन जब बाद में हसन हुसैन ने कहा कि अम्मा पर आखिरी वक्त में क्या कैफियत गुजरी, तो जवाब दी हसमा ने कि बस मैंने ये देखा कि मेरी शहजादी को बुलाकर ज़ैनब कुबरा के कान में कुछ कह रही थी। आखिरी वक्त में मरने वाला कुछ कहे तो औलाद को तो दिल में लगी होती, हसन भी पूछते रहे, हुसैन भी पूछते रहे, ज़ैनब बहन इतना बता दी आखिरी वक्त में अम्मा ने तुझसे क्या कहा। शहजादी की बहुत सारी वसीयतें हैं लेकिन वो अलग अलग, ये वसीयत खास ज़ैनब से, अम्मा ने आखिरी वक्त में क्या कहा। ज़ैनब कुबरा ने कहा कि भाई तुम पूछ रहे हो, मैं ना भी नहीं बोल सकती लेकिन ये अम्मा का राज है। अम्मा ने मना किया, कहा था किसी को ना बताना, जब राज खुला तो पता चला ताल्लुक फिर वही खिदमत औलाद से है। अम्मा ने मना किया, अब क्या बोले हसन, अब क्या बोले हुसैन, शहजादी मना कर गई है, लेकिन बहरहाल फिर भी वक्तन फवक्तन पूछते रहते थे। कहा कि बस ये बता सकती हूँ, दो जुमले कहे थे मेरी माँ ने दुनिया से जाते वक्त मुझसे, मुझसे दो वसीयतें की थी, अब क्या थी वसीयतें ये नहीं पता। पहली वसीयत 15 साल के बाद पता चली, 15 साल गुजर गए, मेरे एक मरहूम उस्ताद मौलाना अजहर हसन जैदी साहब ये जुमले पढ़ते हैं और इतने वसूख से पढ़ते हैं कि उनकी किताब में ये छप भी गए हैं। वो ये कहते हैं 15 साल गुजर गए, मौला मस्जिद नबवी में मसरूफ इबादत है, घर से पैगाम आया, मौला मुबारक हो आपके यहाँ बेटा पैदा हुआ है, उम्मुल बनीन के जरिए अल्लाह ने आपको औलाद अता की है, क्योंकि वाहिद शादी उम्मुल बनीन से थी, जिसमें बार बार मौला कहते थे ये शादी तो सिर्फ मैंने औलाद के लिए की है, चुनाचे फौरन सिजदा शुक्र अंजाम दिया, नमाज़े शुक्राना पढ़ी, फिर मेरा मौला वहां से उठ के एक मर्तबा उम्मुल बनीन के हुजरे में आया, उम्मुल बनीन बराबर में नया बच्चा, ये नौ मौलूद न्यू बॉर्न लेटा हुआ है, एक बार मौला ने झुक के बच्चे को उठाया, अपनी गोद में लिया, चेहरा देखा, कहा कि बच्चा तो वैसा ही है जैसा मैं चाहता था, लेकिन उम्मुल बनीन तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा हुआ है और तुम खुश नहीं हो, गमगीन नजर आ रही। उम्मुल बनीन ने कहा मौला मैं गमगीन क्यों ना हूँ, बच्चा तो दुनिया में आ गया, अब तक आंखें नहीं खोली, मुझे इसके बारे में फिक्र हो गई है। मौला मुस्कुराए क्योंकि ये जुमला मौला को मालूम है कि आज से कई साल पहले मेरी माँ बिनते असद ने भी अल्लाह के रसूल से कहा था, वहां भी यही शिकायत की थी। मौला मुस्कुराए, कहा उम्मुल बनीन घबराओ नहीं, एक कनीज से कहा कोई मेरे हुसैन को बुला के लाए। हुसैन एक बार माँ के कमरे में आए, उम्मुल बनीन एक बार कमरे कमरे में आए, बाबा को देखा, बाबा क्या हुक्म है? अली ने कहा, बेटा हुसैन, आज तुम्हारा बाप तुम्हें एक तोहफा देना चाहता है, एक गिफ्ट देना चाहता है। तोहफा मेराज का नाम है फातिमा, और तोहफा अली क्या है? एक तोहफा देना चाहता है। ये कह के बच्चा हुसैन की गोद में दिया। बच्चा जैसे ही हुसैन की गोद में पहुंचा, या तो पता नहीं कितनी देर से आंखें नहीं खोली थी, या अचानक आंखें खोली और आंखें खोल के हुसैन के चेहरे पे निगाह डाली। इस बच्चे की पहली निगाह हुसैन के चेहरे पर थी। तभी मैदान करबला असरे आशूर, ये बच्चा कहता है, आका जब पैदा हुआ तो पहली जियारत आपकी की थी, दुनिया से जाते जाते आखिरी जियारत भी आपकी करना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूं, एक आंख में तीर है, एक आंख में जमा हुआ खून है। एक बार मेरे मौला ने ये बच्चा हुसैन की गोद में दिया, बच्चे ने आंखें खोली। बाद उलमा कहते हैं कि आंखें भी बाद में खोली, पहले तो नन्हे नन्हे हाथ फैला दिए, शायद पैगाम दे रहे हो, आका हाथों का नजराना तो अभी से ले लीजिए। फिर हुसैन की गोद से बच्चे को वापस लिया। अली ने एक कान में अजान कही, एक कान में इकामत कही, चेहरा देखते जाते हैं, वैसा ही है जैसा मैं चाहता हूँ। अरे इसी के लिए तो मेरे आका रसूलुल्लाह ने कहा था, इसका नाम अब्बास रखना। जैनब कमरे में है, माँ की खिदमत कर रही है। जैनब, इस वक्त जरूरत होती है ना खवातीन को कि कोई खिदमत करे। जैनब माँ की खिदमत कर रही है, लेकिन अब तक वाकये से हटी हुई है। जैसे ही ये सुना, अब्बास आगे आना। एक बार मौला से पूछा, तस्दीक कराई, बाबा क्या मेरे इसी भाई का नाम अब्बास है? अली ने कहा, हाँ जैनब, तेरे इसी भाई का नाम अब्बास है, क्योंकि इससे पहले अली के यहाँ और कई बेटे पैदा हो चुके थे। जैनब के भाई मोहम्मद हनफिया तो सब जानते हैं। तस्दीक कराई, अली ने कहा, हाँ इसी का नाम अब्बास है। जैनब ने कहा, बाबा तो जरा एक लम्हे के लिए अब्बास को मेरी गोद में तो दीजिए, 20 साल बड़ी बहन है। अब्बास को गोद में लिया, बहनें भाइयों को लेती हैं, कोई ताज्जुब की बात नहीं, लेकिन जैसे ही जैनब भाई को गोद में लिया, एक बार कान पे मुंह रख के कुछ कहने लगी। अली मुस्कुराए, कहा, जैनब जल्दी किस बात की? अब्बास को तू पालेगी, अब्बास तेरे पास रहेगा, अब्बास तेरी चादर के साए में पलेगा, बातें बाद में कर लेना, जिंदगी पड़ी है। जैनब ने घबरा के कहा कि नहीं बाबा, इस वक्त मैं कोई बात नहीं कर रही, ये बहन और भाई की बात नहीं है। मुझे 11 साल पहले, मुझे 15 साल पहले अम्मा फातिमा का आखिरी वक्त वसीयत याद आ रही है। अम्मा ने मुझसे कहा, तो जैनब तेरा एक भाई अब्बास पैदा होगा, जब अब्बास पैदा हो तो उससे कहना अब्बास फातिमा तुम्हें सलाम कहती हैं, आज मैंने 15 साल बाद अम्मा की अमानत को अदा किया। अरे हबीब इब्ने मुज़ाहिर को ज़ैनब का सलाम मिला तो गज खा के गिर पड़े, ये तो ज़ैनब से भी अफजल फातिमा जिनका सलाम अब्बास को मिल रहा है। अब्बास कितने खुशकिस्मत हो, दुनिया से जाते जाते भी फातिमा ने याद किया तो तुम्हें याद किया, क्यों? क्योंकि तुम फातिमा के लाल हुसैन के मददगार और नासिर थे। ये पहली वसीयत थी, अब उसे पढ़ा नहीं जा रहा है। बस दूसरी और आखिरी वसीयत, ये तो 15 साल बाद पूरी हो गई, दूसरी वसीयत क्या है? हुसैन कहते भी थे, बहन एक वसीयत तो मैंने देख ली, दूसरी क्या है? कहा, भैया वो भी इकरार है। 50 साल गुजरे, 50 साल, 61 हिजरी, करबला का मैदान, आशूर का दिन, मुश्किल तरीन वक्त, जब हुसैन आखिरी रुख्सत के बाद मरने जा रहा है, हर एक के लिए ये मुश्किल तरीन वक्त है। लैला ने सोचा, मैंने अपना अकबर कुर्बान कर दिया, फिर भी मेरा आका मरने जा रहा। और फरवा ने सोचा, मेरा कासिम, फिर भी मेरा आका मरने जा रहा। हाय रबाब ने सोचा, मेरा असगर, फिर भी मेरा आका मरने जा रहा। सबसे बढ़कर फातिमा, मेरा लाल, मख्तल में मरने जा रहा। हुसैन आखिरी रुख्सत के बाद दर खेमा पर आए, देखा कि ज़ैनब पहले से खड़ी है और कह रही, भैया तू जा तो रहा है, एक काम तो कर ले, जरा अपने गले पर से अमामे का ही टुकड़ा, जिसे तैतुल अनक कहते, हटा तो लेना। हुसैन ने तैतुल अनक को हटाया, जैनब ने हुसैन के गले का बोसा लिया। हुसैन हैरान हो गए, जैनब ये वक्त कोई बोसा लेने का तो है नहीं। जैनब ने कहा, भैया ये बहन भाई के गले का बोसा नहीं ले रही, ये 50 साल पुरानी एक अमानत है जो अदा कर रही। पूछता था ना कि अम्मा की दूसरी वसीयत क्या थी। अम्मा ने मुझे बुला के कहा था, जैनब मैं करबला में जाहिरी तौर पर ना होंगी, मेरे उस लाल के गले का बोसा लेना जिस पर कातिल का खंजर चलेगा। अम्मा की वसीयत पे अमल किया है। बस यहाँ पे जैनब ने अम्मा की वसीयत पे अमल किया। अली ने कहा, जैनब अब जरा तुम भी अपने शाने पर से चादर तो हटाना। चादर हटी, हुसैन झुका, जैनब के बाजू का बोसा लिया। अब जैनब हैरान हुई, भैया ये बाजुओं के बोसे का कौन सा वक्त है? कहा कि भाई बहन की बाजू का बोसा नहीं ले रहा, ये बाबा की वसीयत पे अमल। कर रहा। 21 रमजान को मुझे बुला के आखिरी वसीयत की थी, हुसैन करबला में जाहिरी तौर पे अली ना होगा, मेरी उन ज़ैनब के बाजुओं का बोसा लेना जिसमें रस्सियां बांध कर मेरी ज़ैनब को कैदी बना के बेमकनाऊ चादर के कभी बाजारों में, कभी दरबारों में, कभी कूफा और कभी शाम। खुदावंद शहजादी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और उनकी इस मज़लूमा बेटी उम्मुल मसाइब ज़ैनब कुबरा के मसाइब का वास्ता, जिसे हमेशा फातिमा ने अपना तीसरा हुसैन कहा, उस अब्बास अलमदार का वास्ता, मजलिस अज़ा को सुनने वाले मोमिनीन और मोमिनात को दुनिया और आखिरत की हर परेशानी से महफूज फरमा। गम हुसैन के सिवा हम में से किसी को कोई गम न मिले, हमारे तमाम मरहूमीन की मगफरत फरमा, बीमारों की शफा याबी, लेकिन खुसूसन ये COVID-19 दुनिया भर के इंसानों को जल्द अज जल्द इस वबा और बीमारी से नजात दिला। खुदावंदा साहिबान ईमान के रिस्क हलाल में बरकती अता फरमा, जो मोमिनीन रोजगार की परेशानी में मुबतला है उनकी इस परेशानी को दूर फरमा। खुदावंदा सफ़े अज़ा पे हाजत दिल में ले के बैठने वाले, खाली या जहरा कहने से हाजतें पूरी होती हैं, इन्होंने तो पूरा एक घंटा शहजादी का जिक्र सुना, इनकी तमाम हाजतों को पूरा फरमा। खुदावंदा इस सफ़े अज़ा को भी शाने, जिस जिस का किसी किस्म का कोई ताउन रहा उनकी तमाम हाजतों को पूरा फरमा, उन्हें हर परेशानी से महफूज फरमा और इन मजालिम के इंतकाम के लिए इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।
बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत।